लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, गाजा में युद्ध शुरू हुए 19 महीने बीत चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसियों ने कहा है कि गाजा में राहत सामग्री की आपूर्ति पर नियंत्रण करने की इसराइल की योजना आम लोगों के जीवन को खतरे में डाल देगी और सहायता को चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाने से बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। संयुक्त राष्ट्र समर्थित खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में पूरी फिलिस्तीनी आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा से जूझ रही है और 4.7 लाख लोग विनाशकारी स्तर पर भूख का सामना कर रहे हैं। गाजा में प्रवेश के लिए तमाम सीमा चौकियों की इसराइली नाकाबंदी के कारण 70 दिनों से गाजा में कोई राहत सहायता नहीं पहुंची है। भूखमरी बढ़ रही है और कुपोषण में बढ़ोतरी हुई है। कुपोषण के कारण दस्त, निमोनिया और खसरा जैसी बीमारियों से बच्चों की मौत होने का खतरा बढ़ गया है। खासतौर पर ऐसे माहौल में जहाँ जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच खत्म हो चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने शुक्रवार को जिनेवा में कहा कि इसराइल द्वारा गाजा के दक्षिणी हिस्से में कुछ सीमित सहायता केंद्र बनाने का प्रस्ताव लोगों को विस्थापन और मौत के बीच चुनाव करने को मजबूर करेगा। उन्होंने इसे मानवीय सिद्धांतों का उल्लंघन और एक रणनीतिक दबाव का तरीका बताया।
It's dangerous to ask civilians to go into militarized zones to collect rations. It further entrenches forced displacement for political and
इसराइली योजना बुनियादी मानवीय सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और ये जीवन रक्षक चीजों पर नियंत्रण को एक दबाव रणनीति के रूप में मजबूत करने के लिए बनाई गई प्रतीत होती है। आम लोगों को खाद्य सामग्री हासिल करने के लिए सैनिकृत क्षेत्रों में जाने के लिए कहना खतरनाक है। मानवीय सहायता का इस्तेमाल कभी भी सौदेबाजी के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
यूनिसेफ प्रवक्ता जेम्स एल्डर के शब्द। इसराइल की योजना के तहत गाजा में रोजाना सिर्फ 60 ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि जनवरी से मार्च के बीच युद्ध विराम के दौरान रोज 600 ट्रक गाजा पट्टी में पहुंचते थे। यह आपूर्ति 11 लाख बच्चों समेत कुल 21 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूएन एजेंसी उनर्वा ने कहा कि 3000 से अधिक ट्रक गाजा के बाहर फंसे हुए हैं और जरूरी दवाइयां व खाद्य सामग्री बर्बाद हो रही है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद से ही मानव विकास की धीमी गति बरकरार है और ये वैश्विक प्रगति के लिए खतरा है। इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई रिपोर्ट में सचेत किया है कि लाखों करोड़ों लोगों की भलाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपयोग एक शक्तिशाली उपाय साबित हो सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
मानव विकास यानी आम लोगों की आज़ादी, उनकी क्षमताओं, अधिकारों और उनके कल्याण जैसे मानकों में बेहतरी लाना। पिछले कई दशकों से संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का मानना था कि मानव विकास संकेतक बेहतरी की ओर अग्रसर है, मगर हाल के वर्षों में कोविड-19 महामारी और अन्य विशाल संकटों की वजह से इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यूएन विकास कार्यक्रम के एक वार्षिक अध्ययन के अनुसार लगातार चौथे साल धनी और निर्धन देशों के बीच असमानताएं गहरी हुई हैं। बढ़ते व्यापार तनाव, कर्ज संकट और ऐसे अन्य दबावों की वजह से देशों की क्षमता पर असर हो रहा है। उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में निवेश कर पाना कठिन हुआ है। इस वजह से उनके लिए विकास की दिशा में ले जाने वाले पारंपरिक मार्ग सिकुड़ रहे हैं और वैश्विक प्रगति के लिए ये एक वास्तविक खतरा है। इसके बावजूद रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमता AI में निहित संभावनाओं के प्रति आशा व्यक्त की गई है। अध्ययन दर्शाता है कि व्यवसाय और आम लोग कम कीमत वाले AI उपायों को तेजी से अपना रहे हैं। एक सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 60% प्रतिभागियों ने बताया कि AI टेक्नोलॉजी से उनके कामकाज पर सकारात्मक असर होगा, साथ ही उनके लिए नए अवसर सृजित होंगे।
भारत ने 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की है। साल 2015 से 2023 के बीच ये मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 48 थी, जो अब घटकर 28 हो गई है। यह उपलब्धि भारत के लिए एक मील का पत्थर है और देश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार व बच्चों के जीवन की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आइए सुनते हैं एक संक्षिप्त रिपोर्ट पूजा यादव से।
संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान समूह UNIGME के रिपोर्ट में बताया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों की शुरुआत के बाद भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 42% और नवजात शिशु मृत्यु दर में 39% की गिरावट आई है, जो दक्षिण एशिया और वैश्विक औसत से बेहतर है। इस बदलाव के पीछे भारत की बहुस्तरीय रणनीतियां हैं, जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना, जीवन रक्षक सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और मातृ व बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित योजनाओं को लागू करना। इसमें स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट इस वर्ष मानव विकास की वैश्विक गति में गिरावट की ओर संकेत करती है। खास तौर पर दक्षिण एशिया में यह गिरावट अधिक स्पष्ट है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में एक अपवाद बनकर उभरा है, जहां मानव विकास के संकेतकों में निरंतर प्रगति देखी गई है। भारत ने न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए हैं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जरिए समावेशी और स्थायी विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है। UN हिंदी न्यूज की अंशु शर्मा ने भारत में UNDP की वरिष्ठ अर्थशास्त्री अम्मी मिश्रा से बातें की।
मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP ने 1990 के दशक में शुरू की 1990 में शुरू की थी। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि किसी भी देश की प्रगति या विश्व की प्रगति को समझने के लिए अगर हम आर्थिक प्रगति के संकेतकों से आगे बढ़ सकें और ये समझ सकें कि इस आर्थिक वृद्धि का या आर्थिक प्रगति का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, उससे क्या लोग और सक्षम महसूस कर रहे हैं, उससे क्या लोग और आजाद महसूस कर रहे हैं, तो ये समझने के लिए और प्रगति के हर आयाम को एक तरीके से समझने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई गई थी 1990 में। उसमें 3 मुख्य आयामों पर हम डेटा प्रेजेंट करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। पहला है आर्थिक वृद्धि, क्योंकि वो अपने आप में बहुत जरूरी है। दूसरा है लोगों का स्वास्थ्य, जिसे हम मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, कि औसतन लोग कितने वर्ष तक जीवित रह सकते हैं किसी देश में या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीवित रहेंगे। और तीसरा है एजुकेशन, शिक्षा, जिसमें हम ये जिसमें 2 चीजें देखी जाती हैं, एक है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग।
तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लाखों करोड़ लोगों के कल्याण के लिए AI का उपयोग एक शक्तिशाली उपाय साबित हो सकता है, तो भारत के संदर्भ में AI के उपयोग पर क्या प्रगति नजर आ रही है?
रिपोर्ट बहुत अच्छे उदाहरण देती है भारत में AI के यूज के बारे में, और भारत सरकार खास तौर पे AI मिशन को अगर आप देखिए, उसमें AI को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किन सेक्टर्स में वो ज्यादा लोगों का बेनिफिट कर सकती है, ये बात बहुत आगे रखी जा रही है, इस पर बहुत काम हो रहा है। रिपोर्ट भी आपको बताती है कि भारत में कुछ जगह पर AI यूज हो रहा है, जैसे अगर आप कृषि सेक्टर में देखें तो जो फार्मर्स हैं उनको नई तकनीकों के बारे में बताना, उन तक सही समय पर मौसम की जानकारी पहुंचाना, सॉइल क्वालिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, ये सब के लिए एआई बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब बहुत बहुत आसानी से और बहुत कम कॉस्ट में आप इस प्रोसेस को स्केल अप कर सकते हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार। वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में वाटिकन से मान्यता प्राप्त राजनयिक कोर के सदस्यों को संबोधित किया। अपने पहले संबोधन में संत पापा ने साइप्रस के राजदूत जॉर्ज पॉलिड्स कोर के निवर्तमान डीन को धन्यवाद दिया। उनके वर्षों की ऊर्जा, प्रतिबद्धता और दयालुता के साथ साथ संत पापा फ्रांसिस और पिछले परमाध्यक्षों से अर्जित सम्मान की प्रशंसा की। फिर राजनयिक प्रतिनिधियों की ओर मुड़ते हुए संत पापा ने मानवता की सेवा करने के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राजनयिक समुदाय को एक परिवार के रूप में वर्णित किया जो जीवन का सुख दुख साझा करता और मानवीय एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। संत पापा ने कहा कि यह परिवार कलीसिया विशेषाधिकार नहीं बल्कि विशेष रूप से प्रेरित चिंता में निहित कूटनीति के अपने विशिष्ट रूप के माध्यम से पुल बनाने के अवसर चाहता है। संत पापा ने आगे कहा कि यह मिशन संत पापा फ्रांसिस की विरासत को प्रतिध्वनित करता है जिनकी गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति प्रतिबद्धता, साथ ही सृष्टि की सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय पर उनका ध्यान एक निरंतर और सतत प्रेरणा बनी हुई है। अपने स्वयं के जीवन पर विचार करते हुए जो उन्हें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप में ले गया, संत पापा ने सीमाओं को पार करने और दुनिया भर के लोगों और राष्ट्रों के साथ कलीसिया के संबंधों को गहरा करने की अपनी व्यक्तिगत इच्छा व्यक्त की। संत पापा के संबोधन के केंद्र में शांति, न्याय और सत्य, ये तीन महत्वपूर्ण शब्द थे जिन्हें उन्होंने कलीसिया की मिशनरी गतिविधि के संदर्भों और परम धर्म पीठ की कूटनीतिक जुड़ाव की नींव के रूप में पहचाना। उन्होंने शांति को युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में नहीं बल्कि एक मांग और सक्रिय उपहार के रूप में वर्णित किया, मसीह का पहला उपहार। उन्होंने कहा, सच्ची शांति विनम्रता, सावधान भाषण, अभिमान और प्रतिशोध दोनों ही अस्वीकृति के माध्यम से मानव हृदय में शुरू होनी चाहिए। उन्होंने शांति को पाने में धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संवाद की अपरिहार्य भूमिका पर जोर दिया। फिर दूसरे शब्द न्याय की ओर मुड़ते हुए संत पापा ने संत पापा लियो 13वें की स्मृति और कलीसिया की सामाजिक शिक्षा की समृद्ध परंपरा पर विचार किया। दुनिया में लगातार बढ़ती वैश्विक असमानताओं के साथ संत पापा लियो ने नेताओं से परिवारों में निवेश करने और अजन्मे शिशु से लेकर बुजुर्गों तक, बीमार से लेकर बेरोजगार तक, नागरिक और अप्रवासी हर मानव व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया। और सत्य के बारे में बोलते हुए संत पापा ने प्रामाणिक संचार और शांतिपूर्ण संबंधों की अनिवार्य आवश्यकता का वर्णन किया। ऐसी दुनिया में जहां वास्तविकता अक्सर विकृत होती है, संत पापा ने कलीसिया के कर्तव्य पर जोर दिया कि वह सत्य को दया के साथ बोले, भले ही वह कठिन हो या गलत समझा गया हो। उन्होंने कहा, सत्य एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है बल्कि मसीह के व्यक्तित्व के साथ एक मुलाकात है। उन्होंने आगे कहा, यह सत्य ही है जो मानवता को अपनी सबसे जरूरी चुनौतियों जैसे प्रवास, प्रौद्योगिकी या पर्यावरण का सामना एकता और साझा उद्देश्य के साथ करने की अनुमति देता है। अंत में उन्होंने एक ऐसी दुनिया के निर्माण में हर देश के साथ चलने के लिए परम धर्म पीठ की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया, जहां सभी सम्मान और शांति के साथ रह सकें। और संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार सुबह 15 मई को कीव के प्रमुख महाधर्माध्यक्ष शेवचुक से मुलाकात की। यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के प्रमुख महाधर्माध्यक्ष शेवचुक ने रविवार 11 मई को स्वर्ग की रानी प्रार्थना के दौरान संत पापा के शब्दों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जब उन्होंने यूक्रेनी लोगों की पीड़ा को याद किया, एक प्रामाणिक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का आह्वान किया और सभी कैदियों की रिहाई और उन बच्चों की वापसी के लिए कहा जिन्हें ले जाया गया था। मुलाकात के अंत में महाधर्माध्यक्ष शेवचुक ने संत पापा को रिक्विम प्रार्थना नामक एक प्रतीकात्मक पेंटिंग भेंट की। उधर 21 मई को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले अफ्रीका और मडागास्कर धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ और यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के आयोग ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें यूरोपीय प्राथमिकताओं में एक गहन बदलाव के बारे में चिंता जताई गई। आधा दशक पहले दोनों सम्मेलनों ने इस बात पर जोर दिया था कि वे दृढ़ता से आश्वस्त हैं कि यूरोप और अफ्रीका में अपनी साझा जड़ों और भौगोलिक निकटता द्वारा चिन्हित अपने दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करके बहुपक्षीय सहयोग को फिर से जीवंत करने की क्षमता है। हालांकि 15 मई को जारी किए गए अपने बयान में दोनों धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों ने अपनी चिंता को उजागर किया कि ध्यान सबसे कमजोर क्षेत्रों और समुदायों के साथ एकजुटता से हटकर और भू राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के एक अधिक संकीर्ण रूप से परिभाषित समूह की ओर चला गया है। दोनों सम्मेलन यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से आग्रह करते हैं, जो 21 मई को ब्रुसेल में मिलेंगे, कि वे अफ्रीकी लोगों की गरिमा को अफ्रीकी संघ AU, यूरोपीय संघ EU साझेदारी के केंद्र में रखें। वे किसान प्रबंधित बीज प्रणालियों की रक्षा और संवर्धन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जो खाद्य संप्रभुता की कुंजी है। उधर गुरुवार दोपहर को सैकड़ों पत्रकार इस्तांबुल में एकत्रित हुए, क्योंकि यूक्रेन और रूस 3 साल से अधिक समय तक चल रहे युद्ध के बाद अपनी पहली प्रत्यक्ष वार्ता करने वाले थे। रूस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद वार्ता के लिए आह्वान करने के बावजूद इसमें भाग नहीं लेंगे। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में रूस के शीर्ष वार्ताकार व्लादिमीर मेंडिस्की, जो इस्तांबुल में है, ने कहा कि मास्को का लक्ष्य संघर्ष की जड़ों को खत्म करके दीर्घकालिक और स्थायी शांति स्थापित करना है, लेकिन पश्चिमी नेताओं ने इस्तांबुल में एक जूनियर प्रतिनिधि मंडल भेजने के रूस के फैसले की आलोचना की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।